الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ انعام کی ان آیات کا ترجمہ ہم کل کی کلاس کے اندر پڑھ کے مکمل کر چکے تھے، آیات نمبر 6 سے لے کے 11 تک. پھر اس کے بعد ہم خلاصہ تفسیر پڑھتے ہیں جو کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے نقل کر کے یہاں پر رکھی ہے. اور اس میں پھر ہمیں ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ترجمہ جو ہے نا وہ پھر ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے، ایک دفعہ اس کی تکرار بھی ہو جاتی ہے، دہرائی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ترجمہ بھی داخل ہوتا ہے اور پھر بریکٹس میں چھوٹی چھوٹی سی تفسیر بھی شامل ہوتی ہے. تو خلاصہ تفسیر ہم پیج نمبر 283 پر سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو عذاب سے ہلاک کر چکے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرنم، ٹھیک ہے، کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو، قرن کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعتوں سے کیا یہاں پر، ٹھیک ہے، ہم ان کو ہلاک کر چکے ہیں. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بریکٹس کے اندر عذاب سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر مراد جو ہے وہ انفرادی اموات کے ذریعے سے نہیں کہ بھئی لوگ مرتے گئے مرتے گئے مرتے گئے اور قرن ختم ہو گیا، پورا پوری جماعت ختم ہو گئی. اس طریقے سے نیو بیبیز پیدا نہیں ہوئے، رائٹ، جیسے کہ آج کل دنیا کے اندر بہت سے ملکوں کے اندر یہ ایشو بنا ہوا ہے نا کہ ان کی پاپولیشن نیچے جا رہی ہے کیونکہ نئے بیبیز پیدا نہیں ہو رہے، نیو بورنز آئی نئے دنیا میں، ٹھیک ہے نا. دو وجوہات ہیں، ایک تو خود ہی پاپولیشن کنٹرول کرنا شروع کیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اتنا برا بنا دیا کسی انسان کو سنبھالنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی ذمہ داری اٹھانا، اس کو اتنا برا بنا دیا کہ شادی ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، کہ شادی کریں گے تو پھر اس کے بعد ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی اور اگر ذمہ داری نہ بھی اٹھائیں تو جب طلاق ہوگی تو پھر جو ہے وہ اس کو پیسے دینے پڑیں گے کیونکہ وہ ان کی گورنمنٹ کا لا بنا ہوا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے شادی نہیں کرتے. اور اگر شادی کر بھی لیتے ہیں تو بچے نہیں چاہتے کیونکہ بچوں کی بھی ذمہ داری کون اٹھائے گا. اس طرح سے ان کی پاپولیشن ختم ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بہت سارے ملکوں کے اندر بنا ہوا ہے. تو ایسے نہیں ہلاک کیا ان کو، اس زمانے میں یہ مسئلے نہیں تھے کہ شادی نہیں کرنا اور بچے پیدا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو ان کو پھر کیسے ہلاک کیا، ان کو اجتماعی طور پر ایک ہی ساتھ سب کو جو ہے وہ عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. یہاں پر اس ہلاکت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ان سے پہلے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو لفظوں کی جو تفسیر لکھی ہے نا تو اس سے جو ہے وہ یہ مراد ہے. آگے فرمایا کہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت جسمانی اور مالی دی تھی، مکناہم فی الارض، ٹھیک ہے. تو مکناہم کی کیا با محاورہ اور سمجھانے والا ترجمہ کیا کہ قوت دی ان کو، ठीक है, सिर्फ मकान नहीं दे दिया कि हाँ भाई चलो मकान लो और चलो जाओ, है सबको एक जो है ना वो रोटी कपड़ा और मकान, जैसे हमारे यहाँ एक साहब ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है तो बस ये हो गया बस, और कुछ नहीं देना तुम्हें, बल्कि वो भी नहीं दिया फिर, नहीं वो तो नारे लगाने होते हैं खाली इलेक्शन से पहले, तो वो मुराद नहीं है, बल्कि जिस्मानी कुव्वत और माली कुव्वत मुराद है, कि तुमको यानी उनको ऐसी जिस्मानी और माली कुव्वत दी थी कि तुमको वो कुव्वत नहीं दी, मालम नुमक्किन लकुम, तुमको नहीं दी वो कुव्वत, और हमने उन पर खूब बारिशें बरसाई, वअरसलना समाअ अलैहिम मिदरारा, ठीक है लगातार जो है बारिशें बरसाई, यानी सैलाबी बारिशें नहीं बल्कि ऐसी बारिशें जिनकी वजह से फसलें होती हैं और हरियाली होती है और मौसम जो है वो साफ हो जाता है। देखिए ये जो स्मोक और स्मॉग जो के आसमान के ऊपर इवन आज के दौर में जो गाड़ियों के धुएं की वजह से, फैक्ट्री के धुएं की वजह से जो स्मॉग जमा हो जाता है, तो ये अगर बारिश होती रहे ना तो ये स्मॉग नीचे आ जाता है, ठीक है ना, और मतलब जो है वो बहुत साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो बारिशें उस जमाने में तो फैक्ट्रियां भी नहीं होती थी और गाड़ियां भी नहीं होती थी, ठीक है, तो वो जो बारिशें होती थी वो माहौल को वैसे ही जरा डस्ट वस्ट जो है वो उसको भी क्लियर कर देती थी, और जो है वो नया सब्जा वगैरह उसको उगाने का भी सबब बनती थी। तो ऐसी बारिशें हमने उनको अता फरमाई और हमने उनके खेत और बागों के नीचे से नहरें जारी की थी, व जअलनल अनहारा तजरी मिन तहतिहिम, ठीक है, यानी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स भी उनको अता किए थे कि जरा सा कुआं खोदा अंदर से जो है वो बड़ा अच्छा सा पानी निकल आया, ये भी इरिगेशन का एक सिस्टम था, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है, और ये के जाहिरी नहरें वगैरह ये भी चल रही थी, यानी ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई जिससे जराअत और फलों की खूब तरक्की हुई और वो खुशहाली की जिंदगी बसर करने लगे। फिर इस कुदरत, इस कुव्वत व कुदरत और सामान व असबाब के होते हुए, यानी इन सब के होने के बावजूद कि हमने ही तो उनको सब कुछ दिया था, ठीक है, लेकिन हमने इसकी कोई परवाह नहीं करी, हमने उनको उनके गुनाहों के सबब अनवाए आजाब से हलाक कर डाला, क्योंकि हमारे नजदीक अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह के नजदीक तो किस चीज की हैसियत है, जिस मकसद से अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है, और वो मकसद खेती बाड़ी नहीं है, वो मकसद इन्वेंशंस करना नहीं है, वो मकसद स्पेस में जाना नहीं है, वो मकसद जो है वो स्पेस स्टेशंस बनाना नहीं है, वो मकसद जो है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना नहीं है, वो मकसद क्या है, वो है बंदगी, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने बंदगी के अलावा और किसी मकसद से जो है ना जिनों को पैदा किया ना इंसानों को पैदा किया। तो जिस मकसद से आपको पैदा किया गया है आप उस मकसद को भूल करके किसी और मकसद के अंदर लग जाएं, तो दैट मीन्स कि यू यू हैव डिक्लेयर्ड योर सेल्फ टू बी इररेलीवेंट, अब आपने जो है ना वो खुद कह दिया है कि मेरी जरूरत नहीं है, मतलब आई आई डोंट डिजर्व टू लिव, राइट, आई डोंट डिजर्व टू बी फॉरगिवन, आई डोंट डिजर्व टू बी ओवरलुक्ड, मैंने अपने मकसद को छोड़ दिया है, अब आप डस्टबिन में फेंके जाने के काबिल हैं, डस्टबिन में ट्रैश कैन में फेंके जाने के काबिल हैं, उसी को कुरान की जुबान में अजाब कहा जाता है ना भाई, आपके घर के अंदर जो है वो बल्ब खरीद करके लाते हैं तो बल्ब जो है जब तक रोशनी देता है तब तक उसको ऊंची जगह पे लगाते हैं, इज्जत देते हैं ना, आपके सरों के ऊपर रहता है वो बल्ब, इज्जत का मकाम होता है ना, बड़ी एहतियात से इसको ऑन करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उसको प्रिजर्व भी करते हैं ऑफ करके कि हाँ भाई कहीं जल्दी खराब ना हो जाए, लेकिन जब वो बल्ब खराब हो जाता है तो अब क्या, मतलब वो अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा, तो अब क्या करते हैं, अभी भी हाँ भाई अभी भी इसको जो है ना वो ऊंचे मकाम पे रखना चाहिए, अभी भी इसको इज्जत देनी चाहिए, नहीं क्या करते हैं उसको उतारते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं क्योंकि मकसद पूरा नहीं कर रहा अपना, ठीक है ना, तो ये उसूल की बात है, ठीक है ना, तो अजाब जो है ना फिर इसी वक्त आता है किसी कौम के ऊपर इज्तिमाही शक्ल में, जबकि वो अपने मकसद से बिल्कुल ही, अब हम देख लें हम अपना मकसद पता भी है कि हम किस मकसद से दुनिया के अंदर आए हैं और हम क्या कर रहे हैं उस मकसद का, कैसे हमारी जिंदगी गुजर रही है, कैसे हमारी सोचें गुजर रही हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्मों की अताअत, फिर वही बात, दिमाग खराब तुम्हारा जो है तो बस अब जो है ना मजीद तहज्जुदें पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट, और मजीद तस्बीहें फेरना शुरू कर देंगे, और मजीद जो है ना वो अपने काम को छोड़ करके जो है ना वो मुसल्ला बिछाएंगे और टका टक शुरू हो जाएंगे। बंदगी का ये मतलब नहीं है, हर किस बंदगी का ये मतलब नहीं है। बंदगी का मतलब ये है अल्लाह के हुक्मों की अताअत। तो ये मतलब नहीं है बंदगी का कि अल्लाह के हुक्म तोड़ भी रहे हैं और लोगों के तोड़ने के ऊपर खुश भी हो रहे हैं और इधर तहज्जुदें पढ़ रहे हैं। लानत है ऐसी तहज्जुदों के ऊपर, लानत है ऐसी तहज्जुदों के ऊपर कि अल्लाह के हुक्म तोड़ते भी हैं और खुश होकर के तोड़ते हैं, और जब दूसरे तोड़ते हैं तो उसके ऊपर भी खुश होते हैं और उसके ऊपर तहज्जुदों के अंबार लगाए हुए, जहन्नुम में जाए ऐसी तहज्जुदें कबूल ही नहीं होती हैं। ऐसी तहज्जुदें, ऐसे नफली अमाल तो कबूल ही नहीं होते। जब फराइज के बारे में, अल्लाह के हुक्मों के बारे में ये एटीट्यूड बनाया हुआ होता है, तो हलाक कर डाला अपने हुक्मों की नाफरमानी की वजह से, और उनके बाद फिर हमने दूसरी जमातों को पैदा कर दिया। हमारा क्या है, हम दूसरी जमात पैदा कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है ना कि तुम होगे तो हमारी बंदगी करने वाला होगा, नहीं होगे तो फिर हमारी बंदगी कौन करेगा, चलो छोड़ देते हैं तुम्हें, नहीं तुम नहीं होगे दूसरा पैदा कर देंगे, ठीक है। तो हमने दूसरी जमातों को पैदा कर दिया, वह अनशअना मिन बादिहिम करनन आखरीन। तो अगर तुम पर भी अजाब नाजिल कर दें, ठीक है, यानी अब जो है ना वो मुशरिकीन मक्का से जिनके ऊपर ये कुरान मजीद नाजिल हुआ, जिनकी हिदायत के लिए या तंबीह के लिए पिछली कौमों का हाल बयान किया गया है, अब उनसे फरमा रहे हैं, और ये हजरत ने तफसीरन बयान किया कि तो अगर तुम पर भी अजाब नाजिल कर दें तो ताज्जुब क्या है, और इन लोगों के इनाद की यह हालत है कि अगर हम कागज पर लिखा हुआ, यानी ए मुशरिकीन मक्का अगर तुम पर भी अजाब नाजिल कर देना तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, तुमसे पहले भी बहुतों को हलाक कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों की इनाद की दुश्मनी की, किसके साथ दुश्मनी, नबी अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी, अल्लाह से दुश्मनी नहीं थी इनको। अल्लाह के तो बैतुल्लाह की जो है ना वो सफाई सुथराई करते थे, राइट, घर जो है वो थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया था तो तोड़ करके जो है वो चंदे के पैसे से, हलाल चंदे के पैसे से अल्लाह का घर बनाया था इन्होंने। हराम कमाई तो करते थे लेकिन अल्लाह के घर में हराम कमाई नहीं इस्तेमाल करी थी, क्यों, अल्लाह से कोई दुश्मनी थी उनको, इस वजह से अल्लाह के घर में उन्होंने हलाल कमाई खाली इस्तेमाल करी और हराम कमाई इस्तेमाल नहीं करी, क्या उनको अल्लाह से दुश्मनी थी इस वजह से कोई ऐसा काम करता है, या अल्लाह से दोस्ती थी उनको, अपने जुल्म में अल्लाह से दोस्ती थी, अपने गुमान में अल्लाह से दोस्ती थी, अल्लाह ने ऐसी दोस्ती को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया ऐसी दोस्ती को, ठीक है। तो एनात तो उनको रसूलुल्लाह के साथ था ना, जैसे कि हमारा भी एनात जो है वो अल्लाह के साथ तो नहीं होता, हम तो अल्लाह के बहुत बड़े वली, अल्लाह के बहुत बड़े जो है वो परहेजगार और मकबूल बंदे हैं अपने जोम के अंदर, एनात किसके साथ है, रसूलुल्लाह के हुक्मों से भी एनात है और रसूलुल्लाह के जो हुक्मों को समझाने वाले हैं हमारे दौर के हिसाब से, हमें बताने वाले हैं कि इस दौर में भाई अल्लाह के रसूल के हुक्मों को ऐसे पूरा करना है, हमें उनके साथ इनाद है। तो ये इनाद ऊपर जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ पलटता है, ठीक है, मौलवियों से इनाद, यानी उलमाए हक जो सही मानों में उलमाए हक हैं, ठीक है ना, जो कि अल्लाह के हुक्मों की जो है वो हमें याद दहानी कराते हैं, हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ये चाहता है तुमसे, अल्लाह ये चाहता है तुमसे, वो उलमाए हक कहलाते हैं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस या किसी और फिर फिके के और मसलक के, ये उलमाए हक की डेफिनेशन नहीं है। उलमाए हक की डेफिनेशन ये है जो कि अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत का काम करने वाले। अब दुनिया के अंदर देखा जाए और दलायल के हिसाब से देखा जाए, शवाहिद के हिसाब से देखा जाए, तो इस वक्त जो है वो सिर्फ उलमाए अहले हक देवबंद ही जो है वो नजर आते हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनमें से कर रहा है वही उलमाए हक में से होगा, जो उनमें से ये काम नहीं कर रहा सिर्फ सो कॉल्ड देवबंदी होने की वजह से वो उलमा हक नहीं बन जाता, ठीक है ना, सिर्फ ऊपर से लेबल चस्पा किया हुआ है इस वजह से उलमा हक नहीं बन जाता अगर वो ये काम ना कर रहा हो, क्योंकि उसने कोई और काम करना शुरू कर दिया, यानी अल्लाह के हुक्मों को मस्क करने का काम शुरू कर दिया, तो देवबंदी होने के बावजूद वो उलमा हक में से नहीं आएगा। फरमाते हैं कि हमने उनको हलाक कर डाला और उनके बाद दूसरी जमातों को पैदा करें, तो अगर तुम पर भी अच्छा, तो इनके ऐनात की ये हालत है कि अगर हम कागज पर लिखा हुआ कोई नवश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाते, ठीक है, वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरफ़ासिन, ठीक है, फिर उसको ये लोग अपने हाथ से छू भी लेते, लम्स भी कर लेते या मस भी कर लेते, फलमसूहु बिअयदीहिम, अपने हाथों से उसको छू भी लेते, जैसा कि उनका मुतालबा था, डिमांड्स ये करते थे, एक से एक ना अजीब और गरीब किस्म के डिमांड्स करते थे, तो उनका एक मुतालबा ये भी था कि लिखी हुई किताब आसमान से आ जाए और हाथों से छू लेने का जिक्र करके, अच्छा लिखी हुई किताब आसमान से आ जाए, ठीक है जी, मर्दों में किसी ने लिखा है कि उलमाए हक की डेफिनेशन क्या है, नंबर वन करेक्ट अकीदा एंड नंबर टू परफॉर्मिंग देयर रोल, ठीक है, परफॉर्मिंग देयर रोल विच इज हिफाजत दीन, हिफाजत दीन, ठीक है, ये है उलमाए हक की डेफिनेशन। खुद अगर गुनाह में मुब्तला हो भी गया लेकिन गुनाह को जायज करार देना ये ना करता हो, ये ना करता, इनफरादी तौर पर गुनाह में मुब्तला हो गया, इससे कोई शख्स उलमाए हक की डेफिनेशन से बाहर नहीं निकल आता, इनफरादी तौर पर गुनाह में मुब्तला हो गया और तस्लीम कर रहा है कि हाँ भाई, लेकिन ये कहे कि नहीं ये गुनाह है ही नहीं, ये तो नेकी का काम कर रहा हूं मैं, अब वो उलमाए हक में नहीं है, ठीक है, क्योंकि असल में ये अकीदा ही उसका खराब हो गया ना, फिर जो शरीयत के अंदर दलील मुतलक के साथ जो साबित है आपने उसको जो है वो कह दिया कि नहीं ये है ऐसा नहीं है, तो फिर तो आपका अकीदा खराब हो गया, ठीक है, तो करेक्ट अकीदा से भी आप बाहर निकल आए। परफॉर्मिंग द रोल का मतलब ये भी नहीं है कि जैसा कि हम बहुत सारे लोगों ने बना लिया है ना कि जी बड़ा जो है वो एक्टिविज्म का काम करें और बड़ा दावत तबलीग की मेहनत करें और जो है वो चार दांग में जो है वो दीन का दाई बन करके जो है फैल जाएं, तो ये है परफॉर्मिंग द रोल, नहीं, ये जमाती और तंजीमी उसकी बात नहीं हो रही कि वो तंजीमी होंगे जमाती होंगे तभी उलमा हक होंगे, तो परफॉर्मिंग देयर रोल को भी उसके लिमिट्स में रखना है, विच इज हिफाजत है दीन, दीन की हिफाजत, ये है परफॉर्मिंग देयर रोल, यानी ये है रोल उलमा हक का। अच्छा, तो उनका मुतालबा ये था कि हाँ लिखी हुई किताब आसमान से आ जाए, ठीक है, और हाथों से छू लेने का जिक्र क्यों किया, क्योंकि हाथों से छू लेने का जिक्र करके नजरबंदी के शुबहे को भी दूर कर दिया, ठीक है, नजरबंदी के शुबहे को, कि भाई वही जो कल बात भी हुई थी कि जादू का एक तरीका ये था कि इंसान के चीज को तो तब्दील नहीं किया जाता लेकिन देखने वालों के जहन के ऊपर ऐसे असर किया जाता है कि वो चीज उनको कुछ और नजर आनी शुरू हो जाती है, ये वाला जादू फिरौन के जादूगरों ने मूसा अलैहि सलाम के साथ यही वाला जादू किया, ठीक है, कि वो जो रस्सियां फेंकी थी ना उन्होंने, तो रस्सियां असल में सांप में तब्दील नहीं हो गई थी लेकिन उन्होंने ऐसी नजरबंदी करी थी, फिरौन की नजरबंदी भी करी थी, सारे के सारे जो स्पेक्टेटर्स थे, स्पेक्टेटर्स जो वहां पे वो पवेलियन में देखने के लिए आए थे ये तमाशा, जैसे कि क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं ना सारे के सारे स्पेक्टेटर्स तमाशा देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी तमाशा ही आए हुए थे सारे के सारे, उन्होंने ऐसी नजरबंदी करी थी कि अवामुन्नास, काफिर लीडर और मोमिन लीडर सबकी नजरबंदी कर दी थी, मूसा अलैहि सलाम को भी वो सांप नजर आना शुरू हो गई थी, मूसा अलैहि सलाम को भी वो सांप नजर आना शुरू, तस्वुर करें, सोचें, अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, कलीमुल्लाह हैं, यानी उलुल अज़्म अंबिया में भी उनका ऐसा मकाम है जो कि किसी दूसरे नबी को अल्लाह ताला ने नहीं दिया, कैसे मुकर्रब नबी थे अल्लाह ताला के, उनकी भी नजरबंदी हो गई, उनको भी वो रस्सियां जो है वो सांप नजर आना शुरू हो गई, ठीक है, तो जादू जो है ना जादू ये नबी पर भी हो सकता है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हुआ, मुआवजतैन क्यों नाजिर हुई थी? नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू हो गया था, उसका तोड़ करने के लिए अल्लाह ताला ने मुआवजतैन अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जादू हो गया था, लेकिन वो दूसरी कस्म का जादू था, नबी अलैहिस्सलाम के दूसरी कस्म का जादू था। लेकिन जादू चाहे वो हो उस कस्म का हो, चाहे जादू जो है वो इस कस्म का हो, या चाहे जादू किसी और कस्म का हो, वो नबी को गुनाह पर आमादा नहीं कर सकता, वो नबी से कोई रूहानी गलती नहीं करवा सकता। जादू के अंदर ये ताकत है ही नहीं, समझ रहे हैं? जादू के अंदर ये ताकत है ही नहीं कि वो गुनाह के ऊपर किसी को मायल कर दे या किसी को मुसलमान से काफिर बना दे। जो लोग ऐसा समझते हैं कुरान की नफी कर रहे हैं, और यही तसव्वुर जो है ना वो फैल गया है कि मुझसे जो है वो नमाज नहीं पढ़ी जाती क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है। अल्लाह के बंदे, तुम्हारे अपने नफ्स ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, इबलीस ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, इस वजह से तुमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। तौबा करो अपने गुनाहों से, अपनी खराफात और अपनी हरकतों को जो है ना देखो, ठीक है, कि जिसकी वजह से तुमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, और इल्जाम जो है वो किसी दूसरे के दोनों आता है कि फलानी ने मुझ पर जादू कर दिया, इस वजह से मुझसे नमाज और तिलावत नहीं की जा रही होती है। قال الكفلما القوا السحر اعين الناس, इंसानों के आंखों के ऊपर उन्होंने सहर कर दिया था, वस्तरहबूहुम वजाउ बिसहर अज़ीम। ठीक है, तो ये लोग कहते थे कि किताब उतारो, तो अल्लाह ताला ने किताब तो क्या उतारनी थी ये बता दिया कि अगर मैं उतारता और अगर ये इसको छू भी लेते ना, ताकि इनकी नजरबंदी का शुबा भी दूर हो जाता, तब भी ये काफिर लोग यही कहते कि ये कुछ भी नहीं बल्कि सरी जादू। ठीक है, क्योंकि हकीकत से तो ऐसे लोगों का कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं होता। वही जो कल बात हो रही थी, होते राइट, होते का क्या ताल्लुक हकीकत से? चले बाकी लोग भी सुन, उनको भी सुना दें, इसलिए कि जाहिर है सब लोग तो नहीं वो कल रात का बयान सुन रहे थे। तो वैसे तो भाई ने रिकॉर्डिंग करके भेजी है, तो इरादा है आप लोगों से शेयर करने का, ठीक है, उसमें सुन लीजिएगा। चले, होते वाला लतीफा, गधे वाला लतीफा, ठीक है। तो ये लोग गधे होते हैं ना, इन्होंने बात नहीं माननी होती, तो इनके साथ उलझने का अक्सर फायदा कोई नहीं होता। तो तब ये लोग जो है ना काफिर यही कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है मगर सरीह जादू है, क्योंकि जब बात मानने का इरादा ही नहीं तो हर दलील में कोई ना कोई नई बात निकाल लेना क्या मुश्किल काम है। ठीक है, हुज्जतें बनाने नाम कहते हैं उसको, क्या मुश्किल काम है। और ये लोग यूं भी कहते हैं कि इन पैगंबर के पास कोई फरिश्ता जिसको हम देखें और बातें सुने क्यों नहीं भेजा गया? पैगंबर के पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया जिसको हम देख लेते? तो हक तआला फरमाते हैं कि और अगर हम कोई फरिश्ता इस तरह भेज देते, ठीक है, वलौ जअलनाहु मलकन वलौ अनज़लना मलकन लक़ुदिय अल-अम्रु थुम्मा ला युनज़रून, अगर हम कोई फरिश्ता उनके ऊपर इस तरह भेज देते तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, फिर नुज़ूल फरिश्ते के बाद उनको जरा मोहलत ना दी जाती। क्योंकि आदत इलाहिया ये है कि जिन लोगों का मुंह मांगा मुआजजा दिखलाया गया, अगर फिर भी उन्होंने ईमान से इनकार किया तो फौरन बिला मोहलत के अजाब से उनको हलाक कर दिया जाता। ठीक है, तो जब मुआजजा सामने, अच्छा डिमांड वाला मुआजजा, ठीक है, तो फिर उनको हलाक कर दिया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी शान थी और अल्लाह ताला की महबूबियत ऐसी थी के डिमांडेड मोजों के बाद भी अल्लाह ताला की हलाकत नहीं आती। ठीक है, और वो नबी अलैहिस्सलाम की वजह से थी, और एक और भी वजह थी, दो वजूहात थी कि जिनकी वजह से मुश्रिकीन ने मक्का के ऊपर अल्लाह का अजाब इस शक्ल में कि पूरी कौम को हलाक कर दिया और मुसलमानों को बस वहां से अबोर्ट कर दिया, है ना, जिस तरह से जब प्लेन क्रैश हो रहा होता है ना, फाइटर प्लेन, तो वो अबोर्ट का बटन दबाता है, पायलट बाहर निकल जाता है और प्लेन जो है वो अपने सारे साजो सामान के साथ क्रैश हो जाता है। तो ये होती है अजाब की शक्ल, जैसे नूह अलैहिस्सलाम को अबोर्ट करवा लिया, बाकी सारी कौम को हलाक कर दिया, लूत अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को अबोर्ट करा लिया और बाकी सारे लोगों को जो है वो हलाक कर दिया, इजेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके लिए। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के कुफार को ऐसे हलाक नहीं किया, उसकी दो वजूहात कुरान मजीद फरमाते हैं, हाफिज साहब वहां पे भी अगर मदद फरमा रहे हैं, वो अंतफीहिम वो और इस्तिग़फ़ार, कि ये इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या होता है? ये पाकिस्तानी तो थे नहीं ये लोग, हैं कि इस्तिग़फ़ार करें और कुछ पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक ये तो अरब थे ना, ठीक है ना, ये उर्दू दान और अंग्रेजी दान तो थे नहीं कि इस्तेखबार करें और पता ही कुछ नहीं कि मैं किस बात पे इस्तेखबार करूं और कर क्या रहा हूं मैं। तो ये तो अरबी थे। अरबी जब इस्तेखबार करता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो माफी मांग रहा है, माफी मांग रहा है, नबी को नहीं मान रहा, इस वजह से मोमिन तो नहीं बन रहा, लेकिन वैसे माफी मांग रहा है। अल्लाह ताला ने इस इस्तिग़फ़ार की वजह से उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं किया, ठीक है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, इस हाल में कि वो इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि जब वो तवाफ़ करते थे ना तो वो इस्तिग़फ़ार करते थे साथ साथ, ठीक है। तो इस्तिग़फ़ार में कितनी पावर है, अगर हम ईमान के साथ अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से माफी मांगते रहेंगे, यानी इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला वाकई माफ करने वाले। तो हम करते नहीं ना ये, या पढ़ते भी हैं तो पता कुछ नहीं होता कि पढ़ क्या रहे हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह करते रहें, क्योंकि गुनाह करते रहने के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर कल तफसील से बात हो चुकी है, ठीक है ना, तो उससे तो नहीं बचेंगे। हाँ, ये बात है कि अल्लाह ताला जो है वो अल्टीमेटली शायद माफ करके महराज जहन्नम से बचा दें, ठीक है। वो तो चल काफी बात हो चुकी है इसके ऊपर। आगे फरमाते हैं कि अगर हम कोई फरिश्ता ऐसा भेज देते तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, फिर नुजूल फरिश्ते के बाद उनको जरा मोहलत ना दी जाती, क्योंकि आदम तलाइया यही है। अच्छा, और जब तक ऐसा मतलूबा मुआवजा ना देखें दुनिया में मोहलत मिलती रहती है, और अगर हम उस पैगाम पहुंचाने वाले वाले को फरिश्ता ही करार दे देते, वलौ जअलनाहू, और अगर हम उसको यानी उस रसूल को ही मलकन बना देते, ठीक है, फरिश्ता बना देते, तो उसको बशक्ल फरिश्ता भेजें तो उसकी हैयत इंसानों से बर्दाश्त ना हो, ठीक है, क्योंकि फरिश्ता नूर के बना हुआ है, और उसकी जो है वो माशाल्लाह, एक फरिश्ते का तो हाल हमें पता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम 600 पर, ठीक है, और वो 600 पर ऐसे नहीं कि जी मोर के पर इनको देख के बड़ी खुशी होती है, बड़े अच्छे लगते हैं, वो 600 पर ऐसे थे कि पूरे के पूरे होराइजन को भर देने वाले, पूरा उफुक जो है वो उससे भर गया, यानी जो उनका देख करके नबी अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े, राइट, जिनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत इत्तेहादी हासिल थी, मोहब्बत का ताल्लुक, कामिल मोहब्बत का ताल्लुक हो चुका था नबी अलैहिस्सलाम के साथ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब नहीं आते थे तो नबी अलैहिस्सलाम का जी चाहता था कि वो अपने आप को हलाक कर लें, पहाड़ से नीचे गिरा दें, ऐसी मोहब्बत थी उनके साथ। लेकिन जब उनको उसकी उनकी असल हैयत में देखा, बर्दाश्त न कर सके नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, तो ये किधर से बर्दाश्त करते हैं अगर फरिश्ते को उसकी असल हालत में। अब हर फरिश्ता हो सकता है डिफरेंट, किसी के 600 पड़ते तो किसी के जो है 1200 पर होते, है ना भाई, वो तो भाई टास्क ओरिएंटेशन के हिसाब से अल्लाह ताला जो है वो मखलूक अपनी बनाते हैं, कोई 1200 पर आ रहा होता, कोई जो है वो दहकती हुई आग की शक्ल में आ रहा होता, कोई पता नहीं किस शक्ल में आ रहा होता, ठीक है, तो इनसे तो बर्दाश्त नहीं होता ना, इसलिए हम उस फरिश्ते को आदमी ही की शक्ल बनाते, ठीक है ना, जो कि इनसे बर्दाश्त हो सकती, क्योंकि अपने हम जिन्स के साथ जो है वो इंसान को एक कंफर्ट लेवल उसका इंक्रीज होता है, आसानी होती है, ठीक है, तो फिर वो उस पर वही शुबा करते जो अब कर रहे हैं, यानी इस फरिश्ते को बशर समझकर फिर भी एतराज करते हैं, यानी वो ये तो बशर ही है, तो उसके ऊपर भी एतराज करते हैं। गर्ज नुजूले फरिश्ता जिसका ये मुतालबा करते हैं, अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो उनको इससे कोई फायदा तो इसलिए नहीं हो सकता कि फरिश्ता बशक्ल फरिश्ता देखने पर उनको कुदरत नहीं, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं कि फरिश्ते को बशक्ल फरिश्ता देखें, और बशक्ल इंसान भेजने से उनका शुबा रफानी होगा, ठीक है ना, यानी ना क्या कहते हैं उसको, ना 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 जाए मानदन ना पाए रफ्तन, है ना, ना जाते बनती है ना आते बनती है, ना उधर ना इधर, ठीक है ना, तो वो जो बेचैन इंसान होता है ना उसका यही हाल होता है, ठीक है ना, उसको ना उधर चैन मिलता है ना उसको इधर चैन मिलता है, असल में उसकी बेचैनी उसके अंदर होती है, ठीक है ना, और वो इल्जाम जो है वो बैरूनी हालात को दे रहा होता है, तो भाई बैरूनी हालात तो वजह थे ही नहीं, बेचैनी की हालत की वजह तो तुम्हारे अंदर की चीज है, तो तुम जहां भी जाओगे तो अपने अंदर को तो साथ लेके जाओगे ना, राइट, जो भी तुम्हें हालात दे दिए जाएंगे तुम्हारा अंदर तो तुमसे रुखसत नहीं हो सकता, तो तुम उसमें भी बेचैन ही रहोगे, यही हाल है। आप देख लें अपने गिर अपने आप को देख लें, एक जगह पे एतराज, एक जगह पे जो है वो कंप्लेन, एक जगह पे नाशुक्री, है ना। तो ऐसा लगता है कि जी यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो फिर जो है ना वो मसला सारा हल हो जाएगा। छोड़ के जाते हैं वहां पे भी मसले, वहां पे भी बेचैनी, वहां पे भी जो है वो तकलीफ। ठीक है, क्या ऐसा नहीं, क्या ऐसा नहीं? तो वही बात है जो कि पहली क्लास में भी हुई थी शायद, अल्हम्दुलिल्लाह वाली, जिसमें बात हुई थी कि जो शुक्र के रास्ते पे चलता है ना, तो अब उसको चैन नसीब होता है। ठीक है ना, शुक्र के रास्ते पे फिर छोटी छोटी बातें भी शुक्र का सबब बन जाती है। ठीक है, हर चीज को जो है वो, हर चीज पे जो है वो अल्लाह का भी शुक्र अदा कर रहा होता है, और जिस चीज से उसको राहत मिलती हुई नजर आ रही होती है उस चीज का भी शुक्र अदा कर रहा होता है। ठीक है ना, और जो शुक्र के रास्ते पे नहीं चलता, तो अब हर चीज में उसको बुराई नजर आती है, हर चीज में उसको जो है ना, ठीक है, और फिर उसको होता है कि नहीं, वो दूसरा जो रास्ता है ना, दूसरा रास्ता, वहां पे अगर मैं होता ना, तो फिर जो है वो मैं शुक्र अदा कर रहा होता। इसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर कि इट्स ऑलवेज ग्रीन ऑन दी समथिंग, क्या है, द अदर साइड ऑफ द फेंस ऑलवेज लुक्स ग्रीन, कुछ इसी किस्म का मुहावरा है वहां, है कि जो क्या कहते हैं उसको उर्दू में, बाड़ या फेंस है, तो उसके परे जो जो दुनिया है ना, वो हमेशा सरसब्ज नजर आती है, जो मेरे पास है वो सरसब्ज है। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मेरे पास जो है ना वो ग्रीन नहीं है। ठीक है, तो यही उसकी कैफियत होती है जो कि नाशुक्री के रास्ते की ओर चल रहा होता है। तो यही मामला जो है ना उन लोगों का भी था कि उन्होंने तो मान के नहीं देना था, तो किसी भी सूरत ना इनका मसला हल नहीं होने वाला, और दूसरी तरफ उनको नुकसान ये पहुंचेगा कि ना मानने पर खुद ही अजाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। ठीक है, यानी इनके डिमांड हम पूरी करेंगे, फिर ये नहीं मानेंगे तो फिर ये के ऊपर अजाब, ये तो उसको हमने बनाया है, और आप उनके बेहुदा मुतालबात से गम ना करें, क्योंकि वाकई आपसे पहले जो पैगंबर हुए हैं उनके साथ भी मुखालिफीन की तरफ से इस्तेहजा किया गया था, फिर जिन लोगों ने उनसे तमस्कर किया था उनको इस अजाब ने आ घेरा, जिसका तमस्कर उठाते थे वो, जिस अजाब का मजाक उड़ाते थे वो, इस अजाब ने आके उनको घेर दिया, जिससे मालूम हुआ कि उनके इस तर्ज अमल से अंबिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि ये खुद उन्हीं के लिए अजाब और मुसीबत है, और अगर ये लोग उम्म में साबिका के अजाब का इनकार करने लगे तो आप उनसे फरमा दीजिए कि जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि तकजीब करने वालों का क्या अंजाम हुआ है। ठीक है, तो अंबिया के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि अंबिया इस दुनिया में भी सुकून की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, है ना, इत्मीनान कल्ब की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, इस दुनिया के अंदर जन्नत उनके अंदर रहती है, इस दुनिया में अंबिया और अंबिया जैसे जो जिंदगी गुजारने वाले होते हैं उनके अंदर जन्नत रहती है, और जब इस दुनिया से वो अगली दुनिया में जाते हैं तो फिर वो जन्नत के अंदर चले जाते हैं, है ना, तो जन्नत उनसे कभी भी दूर नहीं होती। तो उनको तुम शहीद भी कर दोगे, जैसे जकरिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया और यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, उनको तुम शहीद भी कर दोगे ना, तो उन्होंने छोटी जन्नत से बड़ी जन्नत के अंदर खाली मुंतकिल हो जाना है, उनका कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, और अगर तुम शहीद नहीं कर पाए उनको, उनके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कामयाबियां रखी थी, जैसे नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया की भी जो है वो बादशाहत और मिल्कियत अता फरमानी थी, तो दुनिया में भी वो कामयाबी रहेंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, और आखिरत में भी कामयाब ही। ठीक है, यही उसूल है। अच्छा, फिर इन आयात के मारुफ मसाइल फरमाते हैं कि पिछली आयतों में अहकाम इलाहिया और तालीमात रसूल से एराज करने या मुखालफत करने वालों पर वईद शदीद का जिक्र था, इन आयात में उन्हीं मुनकरीन का रुख अपने गिर्दो पेश के हालात और अगले जमाने के तारीखी वाकयात की तरफ फेर कर उनको इबरत व नसीहत हासिल करने का मौका दिया गया है। ठीक है, तो पहले डायरेक्टली उनको मुखातब किया गया, फिर जो है वो दूसरी तरफ देखने के लिए कहा गया, बिला शुबा तारीख आलम इबरतों की एक किताब है, जिसको अगर चश्मे बसीरत से देखा जाए, ठीक है, बसीरत वाली आंख से अगर उसको देखा जाए, तो वो हजारों वाजों से ज्यादा मुअस्सर वाज है। ठीक है, देखने वाली निगाह चाहिए तो फिर हर चीज ही इबरत का सबक बन जाती है। एक हकीम का ये जुमला बहुत ही पसंदीदा है कि दुनिया एक बेहतरीन किताब है और जमाना बेहतरीन मुअल्लिम, बेहतरीन उस्ताद जो है ना वो जमाना है, लेकिन किसके लिए, जो के उसको बतौर मुअल्लिम के देखे, माने उसको बतौर मुअल्लिम के, और दुनिया को जो है वो किताब के तौर से इबरत की निगाह से पढ़े, उसके लिए ये सब कुछ है। यही वजह है कि कुरान करीम का एक बहुत बड़ा अंसर किसस या कसस और तारीख है, किस्से और तारीखी किस्से। लेकिन आम तौर पर गफलत शियार इंसान ने दुनिया की तारीख को भी एक तफरीही मशगले की हैसियत से ज्यादा वक्त नहीं दी। ठीक है ना, हिस्ट्री को जो है एज अ सब्जेक्टिव स्टडी, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन सब्जेक्ट, यानी इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं है, सब्जेक्टिव स्टडी है। ठीक है ना, यही फर्क होता है अंग्रेजी के इन दो टर्मिनोलॉजीज के अंदर। सब्जेक्टिव स्टडी, क्या अभी फैक्ट्स पढ़ लिए, फिगर्स पढ़ लिए, रट लिए, इम्तिहान में पास हो गए, अच्छे ग्रेड्स लेकर के आ गए, बस जी खत्म बात, इसको सब्जेक्टिव स्टडी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टडी ये होती है कि आप उसको पढ़ रहे हैं और आप उसको जो है ना वो अपनी जिंदगी में और अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर उसको अप्लाई कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्टिव स्टडी करना कहते हैं। ठीक है, तो गफलत शियार इंसान क्या होता है कि उसने हर चीज को सब्जेक्टिव बना दिया होता है, और तफरीही मशगला, हाँ भी इंजॉय करेंगे, आई फील वेरी गुड, जिस तरह से नॉवेलें पढ़ने की चस्का लगा हुआ होता है, उसी तरीके से भी लोगों को किताबें पढ़ने का चस्का लगा हुआ होता है, एक किताब के बाद दूसरी किताब, दूसरी के बाद तीसरी, चेन स्मोकर्स की तरह से चेन रीडर्स होते हैं, चेन रीडर्स, जिस तरह स्मोकिंग में नशा मिलता है ना, जिस तरह स्मोकिंग में अच्छा फील होता है लोगों को, उसी तरह से किताब पढ़ने के अंदर अच्छा फील हो रहा होता है, दैट्स अबाउट इट, उससे ज्यादा नहीं। तो इन्होंने ना इसको भी वाज और हिकमत की बेहतरीन किताब, यानी अल्लाह की किताब कुरान को भी अपनी गफलत और मासियत का एक जरिया बना लिया। पहले किस्सों और कहानियों का या तो सिर्फ ये काम रह गया, पिछले किस्सों और कहानियों का या तो सिर्फ ये काम रह गया कि नींद से पहले उनको ख्वाब आवर दवा के कायम मकाम इस्तेमाल किया जाए, लोरियां देने के लिए जिसको कहते हैं, ठीक है, लोरियां देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, या फिर खाली औकात में दिल बहलाने और वक्त गुजारने का मशगला बनाया जाए। ठीक है ना, बुक रीडिंग है तो भाई तफसीर भी तो एक बुक ही है ना, तफसीर की किताब को भी जो है वो वही सब्जेक्टिवली पढ़ने का मशगला। शायद इसीलिए कुरान करीम ने तारीख आलम की रूह को इबरत व नसीहत के लिए लिया है, मगर आम दुनिया की तारीखी और अफसानवी किताबों की तरह नहीं। यानी तारीख आलम के जो किस्से हैं उनको कुरान मजीद ने इस्तेमाल तो किया है, लेकिन उसका असलूब बदल दिया है। आम हिस्ट्री बुक्स जो होती हैं और अफसाना वगैरह जो होता है, तो उनमें जिस तरह से होता है कि जिनमें किस्सा गोई या तारीख निगारी खुद ही एक मकसद होता है, ठीक है, यानी इन ऑफ इट सेल्फ यही मकसद होता है इन किताबों के अंदर कि बस किस्सा बयान करना है, दैट्स इट, एंटरटेनमेंट के लिए। इसलिए तारीखी वाकयात को कुरान मजीद ने तारीखी वाकयात को मुसलसल किस्से की सूरत से बयान नहीं फरमाया, बल्कि किस्से का जितना टुकड़ा जिस मामले और जिस हाल से मुताल्लिक था वहां उतना ही टुकड़ा जिक्र कर दिया, फिर किसी दूसरी जगह उस किस्से का दूसरा टुकड़ा वहां की मुनासिबत से बयान फरमा दिया। ठीक है ना, अब देखें बाकी सारे किस्सों में तो ये बात आसानी से समझ में आ जाती है कि टुकड़े 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 के अंदर बेशुमार जगहों पे सबसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात और फिर दूसरे भी अंबिया के वाकयात, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम के अपने जिंदगी के वाकयात इसी तरह टुकड़ों की फॉर्म में। लेकिन सूरह यूसुफ के ऊपर किसी को इश्कार हो सकता है कि नहीं, सूरह यूसुफ के अंदर जो है ना वो तो पूरा वाकया बयान फरमाया बड़ी तफसीर के साथ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इवन सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को सवाने हयात कोई थोड़ी है, राइट, एक-एक गोशा, एक-एक तफसील, जैसे कि किसी हिस्ट्री बुक के अंदर हिस्टोरियंस अगर मौजूद होता है तो भी लिखते हैं, और अगर मौजूद नहीं होता तो अपनी तरफ से बना के लिख देते हैं उसके अंदर, राइट, लेकिन मकसूद ये होता है कि बहुत डिटेल हो हिस्ट्री की किताब के अंदर, ऐसी डिटेल तो नहीं है सूरह यूसुफ के अंदर, बहुत सारी चीजें स्किप हुई हुई है सूरह यूसुफ के अंदर, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुताल्लिक, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इवन जो डिटेल अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में रखी भी है उसके अंदर भी बात करते करते फिर अल्लाह का जिक्र, बात करते करते फिर कोई नसीहत की बात, बात करते यानी को किस्सा बयान करते करते फौरन से अल्लाह की तरफ कोई बात शुरू हो जाती है, अल्लाह का कोई बात कोई जिक्र आ जाता है और कोई इबरत की बात आ जाती है, कोई नसीहत की बात आ जाती है। क्योंकि ये मकसद है असल में, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करना असल मकसूद नहीं था, ठीक है। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में जिसमें इतनी तफसील है ये मकसद नहीं है, तो फिर बाकी किस्से तो और भी ज्यादा इसके विस्तार बनते हैं। तो सूरह यूसुफ कुदरतन पिछले साल जो रमजान की तफसीर की क्लास हुई थी, तो जिन लोगों ने अटेंड नहीं करी थी तो उनके लिए कि वो सूरह यूसुफ ही हमने पिछले साल पढ़ी थी, और अलहमदुल्ला काफी अरसा पढ़ी थी, तब तक रमजान से पहले ही शुरू हो चुकी थी, रमजान की काफी बाद में वो खत्म हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग सारी सारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। बड़ी बड़ी रेलिवेंट है सूरह यूसुफ ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, बल्कि दीनदार मुसलमानों के, ठीक है। क्योंकि बाकी किस्सों के अंदर तो फिरौन और नमरूद और हामान और है अबू जहल, इन लोगों का जिक्र होता है ना, ठीक है, और इनके खिलाफ जो है वो अल्लाह के नबी होते हैं, लेकिन सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके मुकाबले में कौन लोग थे, ईमान वाले यानी इनके भाई जो कि ईमान वाले थे और उन्हीं के घराने के लोग थे, राइट। तो ये जो रेलेवेंस हमारे साथ है ना, ये ज्यादा क्लोज रेलेवेंस है हमारे साथ बनिस्बत दूसरे वाकयात। अच्छा, तो इस वजह से सूरह यूसुफ को जो है ना वो यानी तरजीहन तरजीही बुनियादों के ऊपर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए और सुनना चाहिए, अगर इसके कोई दुरुस्त मौजूद है तो उनके साथ मिला करके जो है वो तफसीर की किताब पढ़नी चाहिए। अच्छा, तो फरमाते हैं कि ये जो है ना कि एक किस्से का दूसरा टुकड़ा जहां पे उसकी मुनासबत थी वहां बयान फरमा दिया, तो इसमें इस हकीकत की तरफ इशारा हो सकता है कि कोई खबर या किस्सा कभी खुद मकसूद नहीं होता, कोई भी खबर। अब यहाँ पर कोई खबर से मुराद सिर्फ जो है वो ये नहीं कि कुरान की खबरें, बल्कि कोई भी खबर और कोई भी किस्सा जो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, चाहे वो जो है वो आपके किसी दोस्त ने आकर के आपको बताया है, चाहे जो है वो आपने किसी अखबार में उसको पढ़ा है, चाहे जो है वो किसी मीडिया आउटलेट से आपको सुनने को मिला है, कोई भी खबर कोई भी किस्सा किस्सा बजात खुद मकसूद नहीं होता, बल्कि हर खबर से कोई इंशा और हर वाकये के इजहार से कोई अमली नतीजा निकालना मकसूद होता है। क्योंकि ये खबरें जो हम तक पहुंच रही हैं किसी भी जरिए से हो, वो दरअसल अल्लाह ताला पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला पहुंचा रहे हैं। और अल्लाह ताला क्यों पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला क्यों पहुंचा रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है उस मकसद को पूरा करने में हमारी मदद हो सके, ठीक है ना। जिसको कहते हैं ना जैसे कि जंगों वंगों के हम किस्से पढ़ते हैं पुराने जमाने के, कि भाई उन्होंने इधर लश्कर रवाना किया, ठीक है ना, इतने हजार का लश्कर जो है वो अपने सिपह सालार के साथ रवाना किया, और फिर कुछ अरसे के बाद उनको कुमक भेजी। कुमक, कुमक का लफ्ज बड़ा मजे का लफ्ज होता है, ये बचपन से चूंकि हम ये पढ़ते आ रहे हैं ना इस वजह से बड़ा मुझे। तो कुमक का मतलब क्या होता है कि जी अब जो है ना वो 10,000 का लश्कर भेजा था तो 2,000 की कुमक भेज दी, असिस्टेंस। क्यों असिस्टेंस भेजी है, क्योंकि चाहते हैं कि हमारा जो लश्कर है वो कामयाब हो जाए, दुश्मन को शिकस्त दे सके, इस वजह से जितना मुमकिन हो असिस्टेंस भी पीछे से भेजते रहते हैं। आजकल जो है वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के जरिए से भी इतला देते रहते हैं, सैटेलाइट के जरिए से जो है वो सर्वेलेंस भेजते रहते हैं, और जो है वो ऊपर से जहाज भेजते रहते हैं, और मजीद जो है वो इन्फेंट्री भेजते रहते हैं। क्यों, ताकि लश्कर कामयाब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया में कामयाबी के लिए भेजा है, कामयाबी का रास्ता क्या है, बंदगी। तो बंदगी में असिस्टेंस के लिए हमें कुमक भेजते रहते हैं, और ये कुमक क्या है, ये खबरें हैं, ये कुमक क्या है, ये वाकयात हैं, ये हिदायत है, राइट, ये किताब है, ये रसूल है, ये मौलवी साहब हैं, ये शेख साहब हैं, ये पीर साहब हैं, ये फलाने नेक दोस्त हैं, ये फलाना वाकया है, ये सब अल्लाह की तरफ से असिस्टेंसेस है हमारे लिए। कितना करीम है वो परवरदिगार, कितना करीम और रहीम है वो परवरदिगार, कितना वो चाहता है कि हम फेल ना हो जाएं, कि हम फेल ना हो जाएं, राइट, हम फ्लाइंग कलर से कामयाब हो जाएं, कितना वो चाहता है, इसी वजह से तो भेजता है ये सारी चीजें हमारी तरफ। ठीक है, इसीलिए इस वाक्य का जितना हिस्सा उस मकसद के लिए जरूरी है उसको पढ़ो और आगे बढ़ो और अपने हालात का जायजा लो और वाकयात माजिया से सबक हासिल करके अपनी इसलाह करो। ये है मकसद इन सब चीजों का। ठीक है, इसी वजह से इस मकसद को हासिल करने के लिए अब जो हमसे बन पड़े हमें वो करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कल भी बात हुई थी शायद, और उससे पहले भी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप आए दरस कुरान में, कुरान सीखने के समझने की नीयत से आए। ठीक है, लेकिन अगर इस 1 घंटे के दरस में जो बातें आपको सुनने को मिल रही हैं, ये अगर रजिस्टर नहीं हो पा रही है आपके जहन के अंदर, अगर ये आपको क्लेरिफाई नहीं हो रही है, या आपको बिल्कुल याद नहीं रह पा रही हैं, तो फिर इसकी तकरार का कुछ इंतजाम करें, नोट्स बनाने का इंतजाम करें, साथ कागज कलम पेंसिल कॉपी सब लेकर के बैठें, इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करें, बाद में इसके ऊपर एक निगाह डालें, राइट, एक से ज्यादा निगाहें डालें अगर मुमकिन हो, और अगर आपस में बैठ करके तकरार करने का, ठीक है, माशाल्लाह फिक्र करने वाले उन्होंने अपने घरानों के अंदर तकरार का सिलसिला शुरू कर लिया है, मियाँ बीवी बच्चे सब जो है वो बैठते हैं। अच्छा, अगर दूर है तो जूम के ऊपर 40 मिनट का तो फ्री जूम जो है वो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिया, तो इस फ्री जूम सेशन को हम इस काम के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। कितने हैं, कितने हम खानदानों को जानते हैं कि जिनके अम्मा अब्बा जो है वो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, और बच्चे जो है वो कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो कोई अमेरिका में है, तो कोई इंग्लैंड में है, रोजाना जूम के ऊपर मिलते हैं, रोजाना जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उन खानदान वालों की आपस में। तो अल्लाह के दीन को समझने की नीयत से हम ये काम नहीं कर सकते, या हमारी जो रोजाना फैमिली गैदरिंग होती है उसके अंदर इसको शामिल नहीं कर सकते कि भाई हम जो है वो दरस कुरान की जो है वो तकरार कर लिया करें, इसके अंदर कुछ मुजाकरा कर लिया करें, कुछ तस्करा आपस में कर लिया करें कि भाई तुम्हारे क्या समझ में आया, तुम्हारी क्या समझ में आया, मेरे क्या समझ में आया, लेट्स पुट देम ऑल टुगेदर, राइट, और जो वो अगर किसी की कोई गलत फहमी हो गई है तो या तो आपस में ही उसको करेक्ट कर लें, या अगर करेक्शन नहीं हो पा रही है तो फिर हम उस्ताद के पास चले जाएंगे, उनसे पूछ लेंगे कि आप जो है वो हमारी इस कंफ्यूजन को दूर फरमा दें। इसको नहीं कहा जाएगा सर खाना, इसको उस्ताद का सर खाना नहीं कहा जाएगा। सर खाना तो वो खोते और शेर वाली लड़ाई के अंदर सर खाना कहलाता है, जिसमें फजूल की बातों के अंदर जो है वो बड़े को तंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मकसद है। तो एक ईमान वाला जो है ना, यानी जो जाकिर होता है, जाकिर हमारे यहाँ वही ना, इस्तलाही तारीफात बस किताब में जो लिखी हुई है बस वही हमारी तारीफ बन जाती है, और बाकी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। ठीक है, तो जाकिर की तारीफ क्या है, हमारी इस्तेलाह में क्या दाखिल हो गई, जी वो जो या तो मुराकबे करता है बहुत लंबे लंबे, ठीक है ना, तो ये जी जाकिरीन में से, ये मुराकबे करते रहते हैं वो, या जो है ना वो तस्बीह फेरता रहता है, जी ये जाकिरीन में से है, ये तस्बीह फेरते रहते हैं, इनके हाथ में हर वक्त तस्बीह रहती है। और गाफिल की तारीफ क्या है, कि गाफिल जो है ना ये तो वो है जो शराब पीता होगा, और जो है ना ये नाच गाने करता रहता होगा, और जो है वो कत्लेआम करता रहता होगा, या जो है वो पता नहीं और इस किस्म की जिस किस्म के काम करता रहता होगा, तो वो गाफिल है और वो जाकिर है, राइट, जाकिर वो है और गाफिल ये है, बस खत्म बात। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जाकिर की हकीकत ये है कि उसका दिल जिंदा होता है, उसका दिल जिंदा होता है, उसकी निगाहें इबरत वाली निगाह होती है, चाहे वो तस्बीह ना फेरता हो, चाहे वो लंबे मुराकबे ना करता हो, ठीक है, चाहे वो लंबे मुराकबे और तस्बीहात ना फेरता हो, उसका दिल जिंदा हो, उसकी आंखों में इबरत मौजूद है, ठीक है ना, और वो चीजों को इबरत की निगाह से देखे, चाहे कोई भी चीज उसके सामने आ रही हो। और गाफिल कौन है? गाफिल वो नहीं है, गाफिल वो है कि जिसका दिल मुर्दा है और उसकी निगाहें इबरत वाली निगाहें नहीं है, चाहे वो कभी भी शराब ना पीता हो, चाहे वो कभी भी जिना ना करता हो, मौसीकी ना सुनता हो, ठीक है ना, बस अपना रोजमर्रा की दाल रोटी के अंदर लगा हुआ है और इबरत की निगाह उसके पास नहीं है, ठीक है ना, एक आम सी जिंदगी गुजार रहा है, इबरत की निगाह से गाफिल, बिल्कुल महरूम है, ये बंदा गाफिल है, ठीक है, हत्ता के तस्बीहात भी फेरता है लेकिन इबरत की निगाह नहीं है उसके पास, दिल इसका जिंदा नहीं होके दे रहा, ये बंदा गाफिल है, हकीकत ये है, ठीक है ना, एक चीज की एक जाहिरी तारीफ होती है और एक चीज की हकीकत होती है, ये फर्क है जाहिर में और हकीकत में। हमारे हजरत क्या समझाते हैं, बातों को हम सुनते क्यों नहीं है, सही पुरानी पुरानी में 25-25 साल पुराने बयान के अल्फाज आपके सामने बयान कर रहा हूँ, हजरत ने कहा एक 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 बांस होता है और एक गन्ना होता है, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन गन्ने को आप चूसते हैं अंदर से मिठास निकलती है, बांस को आप चूसें आप चूस भी नहीं सकते उसको, मिठास क्या मिलेगी आपको उसके अंदर से, ऊपर से दोनों बांस लगते हैं, ठीक है ना, तो हकीकत क्या है और जाहिर क्या है, हमें जाहिर से ज्यादा हकीकत की फिक्र होनी चाहिए, ठीक है, तो ये मकसद है ना, यही तो आम सी बात है भाई, एक एक डॉक्टर जो होता है उसकी निगाह डायग्नोसिस वाली निगाह होती है ना, अब वो हर चीज के अंदर कभी इसकी ये वजह है, इसकी इल्लत ये है, मशायख और फुकाहा कहते हैं इल्लत क्या है इस फलानी चीज की, ऐसा क्यों हुआ, ये आपको जो अगर मसला पैदा हुआ है आपके अंदर, डिजीज लगी है आपको तो क्यों लगी है, तो ये डॉक्टर की निगाह होती है, ये मुआलिज की निगाह होती है, और एक आम आदमी क्या क्या देख रहा होता है, सिम्टम्स, जाहरी हालात को देख रहा होता है, उसको उसको फिक्र ही नहीं होती या उसकी निगाह जाती ही नहीं है कॉजेस की तरफ, इल्लत की तरफ, वजूहात की तरफ, सोचने की कोशिश भी नहीं करता वो उसकी, भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो जिनको नजर आ रहा है उनसे पूछ लो कि कॉज क्या है इस चीज का, फसअलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तअलमून, ठीक है ना, भाई कोई नए नए डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं तो उनको तो कॉजेस समझ में नहीं आ रही होती, तो वो अपने सीनियर डॉक्टर से पूछते हैं ना, अपने रेजिडेंट जो जो उनके प्रोफेसर होते हैं उनसे पूछते हैं ना कि जी आप बताइए, वरना उसके बगैर तो हम डॉक्टर बन ही नहीं सकेंगे, जब तक हमारी निगाह कॉजेस तक नहीं जानी शुरू होगी तो फिर हम कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, तो वो बड़ों से पूछते हैं ना, फिर सीखते हैं ना, उनकी क्लासेस में बैठते हैं ना, गौर से सुनते हैं ना, ठीक है, लेकिन एक बंदा है जो कि ना उसको खुद कुछ नजर आता है ना वो जो है वो नजर आने वालों से पूछता है, देखने वालों से पूछता है, तो ऐसा बंदा क्या है, ये गाफिल है, यही गाफिल है, पूछने वाला इल्म की नीयत से पूछने वाला वो गाफिल नहीं होता, आगे फरमाते हैं कि आयात मुतज़क्किरा में से जिनका जिक्र किया गया कि पहली आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला वास्ता मुखातब मुखातब यानी अहले मक्का के बारे में इरशाद फरमाया कि क्या उन लोगों ने अपने से पहले गुजरने वाली कौमों का हाल नहीं देखा जिससे उनको इबरत व नसीहत होती, और देखने से मुराद क्या है, खाली देखना ऐसे नहीं जैसे जैसे टूरिस्ट जाकर के देखता है, देखने से मुराद उनके हाल पर गौर व फिक्र करना है, क्योंकि वो कौमें उस वक्त तो उनके सामने नहीं थी, कौमें सारे उनके सामने मौजूद थी कि जो देख लेते जिनको वो देख सकते, वो मौजूद तो नहीं थी जिनको देख सकते, तो इसके बाद अगली कौमों की यानी असल मकसद यही है, गौर फिक्र करने ये मकसद है, ठीक है ना, खाली जो है वो वही कल बात हुई थी ना, टिकट कटा के पहुंच गए देख करके वापस आ गए, ठीक है ना, ना तो हम से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है और ना जो है वो हम में से अक्सर ये काम कर सकते हैं, मुमकिन ही नहीं हमारे लिए, तो क्या मतलब भाई, इबरत की निगाह पैदा करो और अपने इर्द गिर्द हर चीज को इबरत की निगाह से देखो, तब बात बनेगी, तो यहाँ पे क्या लिखा, हजरत दिल को जिंदा करने के लिए ही तो मुराकबा मामूलात करना होता है, जिंदा दिल बनने के लिए मामूलात और अपने शेयर से मुनासबत इज अ प्रीरिक्विजिट टू मेक आवर हार्ट लाइट, नो एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। आप अपने जुमले के ऊपर गौर करें कि आपने जो ये जुमला लिखा है ना, इसके अंदर क्या खराबी है। बेहतर तो ये होगा कि आप खुद ही अपनी खराबी को जो है ना वो आइडेंटिफाई करें, अपने बताएं। अच्छा तेने अच्छा हुआ खातिन आपका जुमला पढ़ाने से सुन लिया होगा। तो खौफ दिल पर तारी रहने का अब मेरा क्या बनेगा, खौफ दिल पर तारी रहने के अब मेरा क्या बनेगा, और इसकी वजह से गुनाह से बचना और अल्लाह के हुक्म की अताअत करना। जी ठीक है, मेरा क्या बनेगा। सही, ये तो है यानी सूए खात्मा का खौफ, ठीक है, सूए खात्मा कि मैं अगर अभी नेकी पर हूं भी, अगर अभी जो है वो दीन का इल्म हासिल कर भी रही हूं, या मैं दीन दूसरों को भी सिखा रही हूं, लेकिन मुझे अपने अंजाम का नहीं पता है। जभी तो जिन लोगों को एक से एक माशाल्लाह दुनिया में तो फिर अजायबात होते रहते हैं ना, तो किसी को जो है ना वो तहज्जुद के वक्त में आवाज आ गई कि तुम्हारी निजात हो चुकी है, तुम्हारी निजात हो चुकी, तो अब वो हमसे पूछ रही है कि ये आवाज जो है ये अल्लाह की तरफ से आई थी क्या, या कैसे आई थी ये आवाज। तो इस हादिस ने उनको जवाब दिखा, ये ऐसी आवाजें जो है ना ये सिर्फ नफ्स और शैतानी की तरफ से आती हैं कि तुम्हारी निजात हो चुकी, ठीक है ना, जैसे कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आई थी, ठीक है ना। उनको अब ये बात, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझ जाए, अच्छा इसका मतलब ये मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी बन चुकी हूँ जिस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी को शैतान ने आवाज देकर एक कायदा कहा था कि अब्दुल कादिर जिलानी तुम कामयाब हो गए, तो अब मुझे भी शैतान आवाज देकर के कह रहे हैं कि तुम कामयाब हो गए, यानी एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू जी, इसका मतलब ये एक्स इक्वल्स टू जी, ठीक है ना, मैं अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बन गई बंदा जाए तो कहाँ जाए, ठीक है। तो मैं नहीं भाई, ऐसी आवाजें जो है ना अल्लाह की तरफ से नहीं आती है दुनिया के अंदर, ठीक है ना। अल्लाह की तरफ से जो आवाज आनी थी वो आ चुकी है, वो क्या है, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ये अल्लाह का कलाम आ चुका है हमारे पास कि जब तक तुम पर मौत ना आ जाए उस वक्त तक तुम इबादत करते रहो और यही समझते रहो कि मेरा क्या बनेगा, मेरा अंजाम क्या होगा, डरते रहो उससे, करते भी रहो और डरते भी रहो और डरते भी रहो और करते भी रहो, ठीक है। आपको तो नहीं समझ में आ रहा कि आपके जुमले में क्या खराबी है, डायरेक्ट मैसेज में लिखा करें ताकि थोड़ी इज्जत तो रह जाए उसमें कोई और बता दे भाई इनके जुमले में क्या खराबी है, दिल को जिंदा करने के लिए ही तो मुराकबा और मामूलात करना होता है। ठीक अच्छा, लफ्ज कर्न इस जमात को भी कहा जाता है कि जो एक वक्त और एक जमाने में मुजतमा मौजूद, मुजतमा हालत में मौजूद, ठीक है, उस जमात को, यानी एक इसकी तारीफ क्या है कि वो जमात जो कि किसी एक दौर में एक जमाने में, यानी जिसको हम अंग्रेजी में जनरेशन कहते हैं, ठीक है, उर्दू में उसको जो है वो नस्ल कह देते हैं, और जमाने के तवील हिस्से को भी कहा जाता है कि जिसके बारे में 10 साल से लेकर 100 साल तक के मुख्तलिफ अकवाल हैं, यानी उलमाए कराम के मुख्तलिफ अकवाल है, किसी ने कहा 10 साल को कर्न कहा जाता है, किसी ने कहा 100 साल को कर्न कहा जाता है, मगर बाज वाकयात व रिवायात हदीस से तायद इसकी होती है के लफ्ज कर्न 100 साल के लिए बोला जाता है, जैसे कि एक हदीस में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन बशर माज़िनी को फरमाया था कि तुम एक कर्न जिंदा रहोगे और वो पूरे 100 साल जिंदा रहे, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को दुआ दी कि कर्न भर जिंदा रहो तो वो पूरे 100 साल जिंदा रहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला जो है उस तरह के मौजज़े भी करवा दिया करते थे, ऐसी जो है ना वो गैब की बातें अल्लाह ताला बताते थे, अखबारुल गैब अता फरमाते थे, नबी अलैहिस्सलाम कभी अल्लाह की मर्जी से आगे बयान भी फरमा दिया करते थे कि तुम 100 साल तक जिंदा रहोगी, और वो वाकई 100 साल तक जिंदा रहा। अक्सर हजरात उलमा ने हदीस खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम का यही मतलब करार दिया है कि हर कर्न को 100 साल माना गया, यानी टोटल मिला करके 300 साल। तो जो 300 साल थे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के आगे तक, ओवरऑल ये हैं खैरुल कुरून। ये उस तारीफ के मुताबिक है कि जिसमें के करन इज इक्वल टू 100 ईयर्स माना जाए। लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से देखा जाए कि करन इज नॉट इक्वल टू 100 ईयर्स बट करन इज इक्वल टू जेनरेशन, ठीक है, तो ये फिर जेनरेशन के हिसाब से फिर 3 जेनरेशन बनती हैं, चाहे वो 100 साल, चाहे वो 300 साल तक जिन दुनिया में रही, चाहे वो 250 साल तक दुनिया में रही। 3 जेनरेशन यानी नबी अलैहिस्सलाम की अपनी जेनरेशन, जो कि आप को ईमान की हालत में देखने वाले सहाबे कराम, ये एक जनरेशन बन गई, और फिर ताबियीन, और फिर उनके बाद तबा ताबियीन, ये हो गए 3 खैरुल कुरून। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम मजीद आगे नहीं पढ़ते, कल इंशाल्लाह अलग टॉपिक से आगे पढ़ेंगे। बाकी इनका देखते हैं, इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी तो है कि लफ्ज ही गलत है, आसमान अल्लाह, इन्होंने जवाब दिया खवातीन के लफ्ज ही जो है ना वो गलत है। अच्छा देखते देखते हैं, मीन्स के दीज आर वन ऑफ द वेज टू मेक आर हार्ट लाइव, ही नहीं होना चाहिए, ही नहीं होना चाहिए। अच्छा इन्होंने भी ही, उधर भी ही और इधर भी ही, उर्दू वाला ही, अंग्रेजी वाला ही होता तो फिर तो बड़ा मसला आया। हजरत शायद ये जवाब है कि ये चीजें नफ्स के तस्किए के लिए हैं, जिंदा दिल दीनी गैरत वाला और इबरत देने वाला अल्लाह ताला से डरने वाला दिल होता है। हाँ तो ये जो मुराकबा और मामूलात होते हैं ना, पहली बात तो ये है कि दिस इज नॉट द ओनली, ठीक है ना, तो आपका जो ही वाला जवाब है ना वो भी ठीक है कि ये ही नहीं है मुराकबा और मामूलात, ठीक है ना। और दूसरी बात याद रखें कि मुराकबे और मामूलात जो होते हैं ना, ये इस वजह से करने होते हैं सालिक को क्योंकि उसको शेख ने करने के लिए कहा होता है, ठीक है ना। तो अगर शेख के कहने की वजह से वो मुराकबे और मामूलात करता है तब उसका दिल जिंदा होता है, और अगर वो मुराकबा और मामूलात किताब में पढ़ करके करना शुरू कर दे, या भी किताबों में लिखा हुआ था मुराकबे से दिल जिंदा होता है और मामूलात से दिल जिंदा होता है तो मैंने करना शुरू कर दिया, तो कोई दिल जिंदा नहीं होता। बल्कि क्या चीज जिंदा होती है, बल्कि जिंदा तो पहले से थी, क्या चीज मोटी होती है, नफ्स, ठीक है ना। तो ये तो शेख के अदात के ऊपर होता है, ये तो डिसिप्लिन के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो अब शेख किसी को कहे कि तुम मुराकबा ना करो, ठीक है, बल्कि तुम जो है ना वो खेती बाड़ी करो जाकर के, तो उस खेती बाड़ी से उसका दिल जिंदा होगा, मुराकबे से उसका दिल जिंदा नहीं होगा, ठीक है भाई। इस बात को शैतान बार बार बुला देते हैं भाई, इस बात को याद रखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। इन्होंने लिखा कि अच्छा उन्होंने लिखा भी और मिटा भी दिया, चले खैर इंशाल्लाह, ठीक है। वाकिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।